जया अमरनाथ रावण चारी जया तुंजा विहारे। जया अमरनाथ रावण चारी जया कुंज विहारे। जय राधा माधव जय कुंज विहारे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha, Vrindavan Chandra Radha, Vrindavan Chandra Radhe. Jaya Radha, Kunja Bihari Radha, Kunja Bihari Radhe. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Pranam Sankirtan ki Jai Vishnupada Paramahamsa Paravachakacharya Ashtada Sri Sri Matesi Bhaktadanta Swami Sulaprabhadi ki Ananda Koti Vaishnavarinda ki Namacharya Sri Haridas Thakur ki Prem se kaho Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhaktavarinda ki Ganga Maya Yamuna Maya ki Tulsi Devi Bhakti Devi ki Mayavapur Navadip Dham ki Mathura Vrindavan Dham ki Shri Kshetra Jagannath Puri Dham ki Chandan Yatra Mahamahosavaki Nitai Gaur Premanande. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gaurangam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Aaj hum charcha kar rahe hain Srimad Bhagavat Skand 4 Adhyay 27 Shloka Kramank 3. Kripaya mere piche dohrane ka prayas kijiye. Toya Paguda Parirabdha Kandaro Raho Numantrer Parkushta Chaitana Nakala Raho Babudhe Durateyam Divani Sheti Pramada Parigraha Tayopaguda Parirabdha Kandara Raho Numantrera Parakushta Chaitana Nakala Raho Babude Durateyam Divani Shedi Paramada Parigraha Tayopaguda Parirabdha Kandara Raho Numantrera Parakushta Chaitana न काल रहो बबुधे दूरत्ययम् दिवा निषेदी प्रमदा परिग्रह। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एक श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इस प्रकार से है, तया रानी के द्वारा उपगुढ़ आलिंगन किया, परिरब्ध आलिंगित, कंदर कंधे, रह एकांत में, अनुमंत्रे विनोदपूर्वक, अपकृष्ट चेतन चेतना के नीचे गिराकर, न नहीं काल रह समय बीतने के साथ, बुबुधे ज्ञान था, दुरत्ययम जितना असंभव, दिवा दिन, निशा रात्रि, इति इस प्रकार, प्रमदा स्त्री द्वारा, परिग्रह मोहित। अनुवाद इस प्रकार से है, रानी पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने भी उसे भाव में भर लिया। इस प्रकार एकांत में वे विनोद करते रहे और राजा पुरंजन अपनी सुंदर स्त्री पर इतना मोहित रहने लगा कि उसे अच्छे बुरे का विचार न रहा। वो भूल गया कि रात तथा दिन बीतने का अर्थ है व्यर्थ ही आयु का घटते जाना। तात्पर्य, इस श्लोक में प्रमदा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुंदर स्त्री अपने पति के लिए प्रेरणादायक अवश्य है, किंतु साथ ही अवनति का कारण भी है। प्रमदा का अर्थ है प्रेरणादायक तथा प्रमत्त करने वाली। सामान्यतः गृहस्थ दिन रात के बीते रहने पर गंभीरता से ध्यान नहीं देता। अज्ञानी मनुष्य इतना ही समझता है कि दिन आता है और उसके बीत जाने पर रात आती है। यह तो प्रकृति का नियम है, किंतु वह यह नहीं जानता कि जब प्रातःकाल सूर्योदय होता है तो उसकी आयु उसी के अनुसार क्षीण होती जाती है। इस प्रकार दिन प्रतिदिन जीवन काल घटता है और मनुष्य अपने कर्तव्य को भूलकर एकांत में अपने पत्नी के साथ विषय भोग में लगा रहता है। ऐसी अवस्था अपकृष्ट चेतन अथवा अवनत चेतना कहलाती है। मानवीय चेतना का सदुपयोग कृष्ण चेतना भक्ति तक ऊपर उठने के लिए होना चाहिए, किंतु अपनी पत्नी तथा पारिवारिक मामलों में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मनुष्य कृष्ण चेतना की परवाह नहीं करता। इस प्रकार वह अपक्रमित होता है और उसे इसका पता भी नहीं रहता कि वह लाखों डॉलर खर्च करके भी बीते हुए एक भी क्षण को मोल नहीं ले सकता। जीवन की सबसे बड़ी क्षति है श्री कृष्ण को जाने बिना जीवन बिता देना। हमें जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए और जीवन के
समुचित उपयोग का अर्थ है भगवान की भक्ति बढ़ाना। बिना भगवत भक्ति के जीवन के सारे कार्य समय के अपव्यय मात्र है। श्रम एव ही केवलम, केवल कर्तव्य निष्ठ बनकर हम जीवन का लाभ नहीं उठा सकते। जैसा कि श्रीमद् भागवत 1.2.8 में पुष्टि हुई है, धर्म सुनिश्चितम पुंसाम विश्वक्षेन कथासूय नोत्पाद यतोधि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि ठीक से अपना कर्तव्य करने के बाद कृष्ण चेतना में प्रगति नहीं होती तो यह समझना चाहिए सारा श्रम व्यर्थ रहा। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांकितं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिस्मे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो नबंदो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी उषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च नतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज का ये श्लोक श्रीमद्भागवत स्कंद चौथा अध्याय 27 श्लोक क्रमांक 4 3 और इस अध्याय का शीर्षक है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा। तो सर्वप्रथम मैं उपस्थित सभी वैष्णव से आशीर्वाद की याचना करता हूँ, स्पेशली सुंदर श्याम पू रामनीता पू से कि वे आशीर्वाद दें कि मैं इस कठिन जो टॉपिक है उसके ऊपर परंपरा में बोल पाऊँ। हालांकि कुछ साक्षात्कार नहीं है लेकिन जो भी सुना है उसे दोहराने का प्रयास करूंगा। तो अभी तक हम देख रहे थे कि जो नारद मुनि हैं वे राजा प्राचीन वशी उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो नारद मुनि अगर हम देखेंगे उनके बारे में बहुत ही एक्सपर्ट हम बोल सकते हैं उन्हें प्रचारक है। तो प्रचार के अलग अलग माध्यम हैं, कोई डायरेक्ट प्रीचिंग होता है, इनडायरेक्ट होता है, थ्रू मीडिया जैसे आजकल हम देखते हैं मेल द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा ट्विटर द्वारा, इसे अलग अलग प्रकार हैं। और हम मतलब मुनि जो मुनि होता है आजकल के मुनि मतलब जो पीएचडी होल्डर है जो अननेसेसरी अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं। जैसे कुछ भक्त बता रहे थे कि वो पीएचडी कर रहे थे, हो गया उनका भी, तो जो साबुन लगाने के बाद जो बुलबुला आता है वो कितना बड़ा होता है, कितना देर तक रुकता है शरीर पर। तो ऐसे निरर्थक चीज़ों पर लोग पीएचडी करते हैं या फिर मुनि बन जाते हैं। लेकिन जो नारद मुनि हैं वे यूनिक हैं, और हम देखते हैं कि उनके जो हर एक डिसाइपल हैं या फिर अलग अलग जगह पर उनका जो प्रचार का ढंग है वो कम्प्लीटली अलग है। तो सेम चीज़ जो है वो दूसरी जगह पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब देश काल पात्र के अनुसार वो अपना जो प्रीचिंग स्ट्रैटर्जी है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखेंगे ध्रुव महाराज को ये कहानी नहीं बताई, पुरुंजन की कहानी वहाँ पर नहीं बताई, या फिर जो नारद मुनि जो रत्नाकर डाकू रत्नाकर के पास गए थे तब भी ऐसा कुछ बताया नहीं उन्होंने, तो वहाँ पर अलग बताया, ध्रुव महाराज को अलग बताएं, यहाँ पर भी अलग स्ट्रैटेजी उन्होंने इस्तेमाल की। तो ऐसे नारद मुनि जो हैं यहाँ पर जो प्राचीन परिषद है उनका हृदय शुद्ध करने या फिर उनका परिवर्तन करने, हृदय परिवर्तन करने के लिए जो पुरंजन की कहानी जो है वो हालांकि उनकी है, प्राचीन परिषद की है, आगे जाके पता चलेगा 29वें अध्याय में नारद मुनि बताते हैं कि दूसरा कोई नहीं है तुम ही हो। तो ऐसे नारद मुनि जो हैं देशकाल पात्र के अनुसार यहाँ पर ये कथा या प्राचीन परिषद को प्रचार करते हैं। तो कभी कभी हम देखते हैं कि हम भी प्रचार करते हैं लेकिन सेम चीज का इफेक्ट जो है अलग अलग जगह पर नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं इस्कॉन में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रचार होता है, कई जगह भक्ति वृक्ष होता है, कई जगह नाम अट्ट होता है, कई डिवाइस होता है, तो कई भगवद्गीता कोर्स होता है, तो ये अलग अलग प्रचार के माध्यम है। तो ये जो है हम बोल सकते हैं नारद मुनि हमारे पायोनियर हैं, जो उनसे प्रेरणा मिलती है अलग अलग देशकाल पात्र के अनुसार प्रचार करने के लिए। तो ये नारद मुनि यहाँ पर 25वें अध्याय से शुरू करते हैं प्राचीन परिषद का ब्रेन वॉश करने के लिए। तो राजा पुरंजन जो है उनके बारे में जो गुणों का वर्णन करते हैं नारद मुनि बताते रहते हैं। जब कोई किसी का वर्णन करता है तो उनके प्रति आकर्षण निर्माण होता है। जैसे अभी रुक्मिणी द्वादशी आ रही है अगले हफ्ते हैं, तो जो रुक्मिणी माता है उन्होंने सिर्फ सुना था, जो भगवान कृष्ण है उनके गुणों का वर्णन सुना था और वो नारद मुनि ने किया था हम देखते हैं, तो उनके वो सुनने से वे आकर्षित हो गई थी। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं जो राजा जो है वो आकर्षित हो गया और आगे जाके फिर उनके मिलने की इच्छा हुई, वो मिले, फिर हर एक जो आज्ञा है उस रानी का वो पालने मतलब पालन करने लगे, पालतू जानवर की तरह, प्रभुपाद बोलते हैं हैंडपैक हस्बैंड की तरह। तो पालतू बंदर, प्रभुपाद वहाँ पर उदाहरण देते पालतू बंदर का, जो बंदर है छलांग मारता है लेकिन किसके आज्ञा पर, स्वामी के आज्ञा पर वो छलांग मारता है। प्रभुपाद बोलते हैं बंगाली में कहावत है, पत्नी का जो आज्ञाकारी दास होता है वो अपना ख्याति खो देता है। लेकिन प्रभुपाद आगे बोलते हैं कि लेकिन अगर वो बने सॉरी अगर वो न बने फिर भी पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो प्रभुपाद वहां पर पाश्चात्य देश का उदाहरण देते हैं कि कैसे वे सब उनकी जो फैमिली लाइफ है अस्त व्यस्त हो गई है। नारद मुनि आगे बताते हैं कि जो पुरंजन जो है वो बिना बताए वाइफ को इन्फॉर्म न करके वे जंगल में शिकार करने के लिए चले गए, आखेट पर चले गए। तो वहाँ पर जो वर्णन आता है कि जो पुरंजन रथ लेके जाता है, सोने का रथ लेके जाता है और विस्तार से वर्णन आता है। तो प्रभुपाद वहाँ पर लिखते हैं कि रथ जो है वो ये भौतिक शरीर है, और जो अलग अलग वहाँ पर वर्णन करते हैं जो पांच घोड़े हैं या बाण है, धनुष्य बाण है, अक्षय भाता है, 11 सेनापति हैं, तो ये सब क्या है, बहुत जो शरीर के भाग है। तो ये सब आखेट करने की तीव्र इच्छा राजा से होती है, वो चला जाता है गर्व के साथ। वहां पर जाने जंगल में जाने के बाद वो निर्दयी कठोर हृदय से ही वो आखेट कर सकता है। अगर कोई दयालु है तो वो जंगल में जाकर शिकार नहीं करेगा, तो पहले तो जाएगा ही नहीं और जाने के बाद उसे अपना हृदय जो है कठोर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो राजा है उन्होंने अपना हृदय कठोर ऑलरेडी था, तो निष्पाप पशु की हत्या कर दी। तो वहां पर लिखते हैं प्रभुपाद, अगर कोई राजा मांसाहारी है तो विशिष्ट प्रकार के ही पशु की हत्या करनी चाहिए, ना कि जो दिखे उसे मारना चाहिए, अन्यथा वो उसे पाप लगता है। तो पुरंजन वन में बहुत देर तक पशुओं को मारने लगा, हालांकि रथ पर था लेकिन शारीरिक श्रम भी हो रहा था, उसके कारण वो थक गया। एक्चुअली अगर रानी को पूछे गया होता तो रानी ने टिफिन दिया होता, एक्वा वाटर दिया होता कि अगर आपको है ना इतना श्रम करने के बाद थक गए तो फिर थोड़ा ना पेड़ के छांव में बैठकर अपना टिफिन खोल के खा सकते थे, लेकिन बिना बताए गए थे तो खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी तो थक गए। थकने के बाद सोचा अभी तो जो शक्ति है वो रहा नहीं है तो वापस चले जाए, तो वापस आता है। वापस आने के बाद सबसे पहले वे जो है नहा लेते हैं, नहाने के बाद अच्छा श्रृंगार करता है, कपड़े पहन लेता है, अलंकार पहन लेता है, माला पहन लेता है, उसके बाद फिर वो अन्न ग्रहण करता है और अन्न ग्रहण करने के बाद फिर वो ढूंढने लगता है कि रानी किधर है। पूरे महल में ढूंढता है, उसके महल अलग अलग महल में ढूंढता है, अलग अलग रूम्स में ढूंढता है, लेकिन रानी मिलती नहीं है। तो फिर वो दासियों को पूछने लगता है कि क्या तुमने रानी को देखा है, तो फिर दासियां बोलती हैं हाँ उस एक रूम में नीचे चटे पर वो बैठी है। तो ये सुन के हम रामायण की याद आती है कि कैसे जो कैकेयी हैं अशोक महल में बैठी थी। तो फिर राजा उधर जाता है, उनका गुणगान करने लगता है और उन्हें मनाने का प्रयास करता है। तो वैसे ये मनाने का प्रयास चल रहा है तो वहाँ पर लिखते हैं कि वो मनाते वक्त उनके जो पैर है उनको स्पर्श करता है, उन्हें आलिंगन देता है, जैसे आज का भी जो टॉपिक है आलिंगन के ऊपर है, हम देखेंगे कौन कौन के प्रकार के आलिंगन होते हैं, उससे क्या क्या होता है, नुकसान होता है, फायदा होता है, तो हम आगे जाके देखेंगे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो भौतिक मन, मटेरियल माइंड एंड स्पिरिचुअल माइंड, तो ये मटेरियल माइंड जो है हमेशा सोचता है कि कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन या इंद्र तृप्ति करें, लेकिन उसके अपोजिट जो है आध्यात्मिक माइंड है, आध्यात्मिक मन है, जो हमेशा सोचता है कि कैसे इन इंद्रियों से भगवान को प्रसन्न करें। तो इसमें थिंकिंग, फीलिंग, अनविलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद बताते हैं कि जो थिंकिंग मतलब कि कृष्ण की इच्छा क्या है, हमारे जो बद्ध जीवात्मा है हम, तो कृष्ण की हमारे लिए क्या इच्छा है। कृष्ण चाहते हैं कि हम इस कलयुग का युग धर्म का पालन करके भगवत धाम जाएं। तो फीलिंग, फिर हमारे अंदर फीलिंग क्या आना चाहिए कि हम, तो हमें देखना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं, मतलब कितना टेस्ट हमें उस होली नेम के प्रति है। और विलिंग, तो फिर उसमें एटलीस्ट क्या करना चाहिए हमें, एटलीस्ट जो गुरु ने बताया है 16 माला मिनिमम वो करने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो ये मन जो है सबके पास होता है, अभी उस मन को हमें भौतिक से आध्यात्मिक बनाने का कर्तव्य जो है वो इस जीवात्मा का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो गृहस्थ लाइफ का, हालांकि नारद मुनि जो है वो एक गृहस्थ को प्रचार कर रहे हैं, काफी डिफिकल्ट होता है लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं नारद मुनि जो है। तो यहाँ पर उनको बता रहे हैं जो गृहस्थ लाइफ के कर्तव्य क्या क्या है। तो चाणक्य एक जगह पर बोलते हैं, माता यश्च गृहे नास्ति भार्या च अप्रीवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्य तथा गृहम। तो इसका मतलब यह है अगर घर में माता और पत्नी प्रेममयी नहीं है तो गृह त्याग करना चाहिए। गृह त्याग कर कहां जाना चाहिए, वन में जाना चाहिए, और वन और गृह में कोई अंतर नहीं है अगर ऐसा वातावरण है तो। तो यहां पर देखते हैं माता और पत्नी, तो माता इज कंपेयर टू भक्ति और जो पत्नी है एज कंपेयर टू धर्म। अगर घर में भक्ति है, अगर कोई जो वातावरण जो भक्तिमय वातावरण है और उसे सपोर्ट करने वाला या करने वाली जो पत्नी है तो धर्म का पालन कर रही है, तभी जाकर उस गृहस्थ का, उस फैमिली का आध्यात्मिक उन्नति होता है। अगर भक्ति है लेकिन सपोर्ट नहीं है, पत्नी का सपोर्ट नहीं है या पति का सपोर्ट नहीं है, तो वहां पर उस घर में आध्यात्मिक वातावरण नहीं होगा। अगर एक गाड़ी होता है, उस गाड़ी में दो पहिए होते हैं, अगर दोनों पहिए अगर प्रॉपर हैं, दोनों में हवा ठीक है, दोनों प्रॉपरली सिचुएटेड हैं, तभी जाके वो जो व्हीकल है, वो गाड़ी है, वो आगे बढ़ सकती है। अगर एक में हवा कम है, पंचर नहीं है लेकिन हवा भी कम है, तो फिर भी वो गाड़ी जो है ठीक से चलती नहीं है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है फैमिली लाइफ में पति और पत्नी इनको दोनों को ही एक दूसरे को साथ देकर आगे भक्ति में अपने फैमिली लाइफ को बढ़ा सकते हैं। कोई बोल सकता है, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि चैतन्य महाप्रभु के घर में माता जो है वो तो भक्त भक्ति अच्छी कर रहे थे, उनके द्वारा ही उनको भक्ति मिली है, और पत्नी जो साक्षात गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है, तो फिर वो उन्होंने क्यों छोड़ा, उन्होंने सन्यास क्यों लिया? कुछ प्रॉब्लम हो गया था, घर में झगड़ा हो गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु है उनका उद्देश्य जो है वो अलग था। उन्होंने सन्यास इस कारण लिया कि लोक कल्याण हेतु, जो जीवात्मा है उनका कल्याण करने का उनका हेतु था, प्रचार, जो युग धर्म है कलयुग का युग धर्म है उसका प्रचार हेतु उन्होंने सन्यास लिया था। अगर प्रभुपाद बोलते हैं अगर किसी के घर में माता जो है और जो पत्नी है दोनों अगर भक्ति और धर्म का पालन कर रहे हैं तो उन्हें सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, जो घर में ही वातावरण जो है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते कि घर कैसा है उनका, जब वो शाम को घर जाते तो गोलों की तरह लगता है, क्योंकि सभी जो है भक्तिमय एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। अगर ऐसा वातावरण है किसी को घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो डिवोशनल सर्विस है वो आत्मा का धर्म है, आत्मा का स्वरूप है कि भक्ति करना, और जो रिलीजियस राइट धार्मिक जीवन जो है वो है वर्णाश्रम। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्वधर्म होता है वो दो स्तर पर होता है, एक आत्मा के स्तर पर होता है जिसे भक्ति कहा जाता है, और दूसरा है जो शारीरिक स्तर पर होता है उसे वर्णाश्रम कहा जाता है। तो भक्ति करने के लिए शरीर की भी आवश्यकता होती है, अगर शरीर ठीक नहीं है तो हम भक्ति अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं अगर कोई पत्नी पति से आसक्त है तो नो प्रॉब्लम, होना चाहिए, गुड, लेकिन अगर कोई पति पत्नी से आसक्त है तो वो निंदनीय बोला जाता है। तो जो गृहस्थ है जब एंटर करते हैं गृहस्थ लाइफ में, जो लड़का लड़की है, तो उन्हें दिमाग में ये सोचना चाहिए कि एंटर विथ एग्जिट प्लान, मतलब हम एंटर कर रहे हैं लेकिन एंटर करने से पहले एग्जिट प्लान होना चाहिए उनके अंदर, कि नहीं अभी हम अंदर जा रहे हैं लेकिन आगे का प्लान भी उन्होंने सोच के रखना चाहिए। जैसे कुछ श्लोकों पहले प्रभुपाद बताते हैं कि अगर स्त्री को संतुष्ट करना है अलग अलग माध्यमों से, अन्न वस्त्र निवारा ऑर्नामेंट्स, तो यह सब देके उन्हें संतुष्ट करना है, लेकिन उसके बाद छोड़ नहीं देना है, उनके बाद क्या करना है, उन्हें भक्ति में संलग्न करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ उनके जो सेंसेस को या इंद्रियों को संतुष्ट करते रहेंगे और भक्ति का एक भक्ति उन्हें नहीं देंगे, तो वो जो फैमिली लाइफ है वो मिजरेबल हो जाएगा। तो जनरली उसमें बताते प्रभुपाद कि जो आदमी का जो काम है वो एक ही डायरेक्शन पे फोकस होता है उसका, लेकिन जो स्त्री का काम होता है वो अलग अलग डायरेक्शन पे फोकस होता है। तो इसलिए जो है अलग अलग वस्तु देकर उन्हें भक्ति में लगाना चाहिए। तो प्रभुपाद बताते हैं अगर किसी व्यक्ति को गृहस्थ लाइफ में रहना है तो ही शुड बिकम डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, कूटनीति, ओके, कूटनीति, कूटनीति का पता होना चाहिए कि कैसे उस गृहस्थ लाइफ को चलाने के लिए क्या क्या लगता है। तो सीधा सीधा वो चला नहीं सकते, इसमें थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक होना ही पड़ेगा। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि जो स्त्री का स्वभाव है तो वो रजोगुण और तमोगुण में ज्यादा रहता है, और जो व्यक्ति है या पति है उसका जो स्वभाव है वो सत्वगुण में होता है। तो लेकिन इसमें जो सत्वगुण है पति में तो उसका इस्तेमाल उन्होंने उस पति को भक्ति में लगाने के लिए करना चाहिए। तो ये उल्टा नहीं होना चाहिए, पत्नी सत्वगुण में है और पति रजोगुण तमोगुण में है तो प्रभुपाद बोलते हैं इट इज डेंजरस, वो खतरनाक हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जो बुद्धि जो है वे हमेशा दो तरह का होता है, एक तो भौतिक चीजों के प्रति भागता है और दूसरा है कि वो आध्यात्मिक तरह तरह तब तरफ जाता है। तो तो जो व्यक्ति है, जो पति है, पति का कार्य पति को ही करना चाहिए और स्त्री का कार्य स्त्री को ही करना चाहिए, तभी जाकर वो जो फैमिली लाइफ है स्मूथली चलेगा। अन्यथा केओटिक लाइफ मतलब या फिर पूरा गड़बड़ उस फैमिली लाइफ में हो जाएगा। तो एक उदाहरण देते हैं परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज कि अगर BMW है और उसे ट्रैक्टर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा उस BMW का, तो पता नहीं कितना खेती वो जोत पाएगा, कितना देर तक चलेगा वो भी गारंटी नहीं है। अगर ट्रैक्टर लाकर ही हम अगर खेत जोतेंगे तभी वो उस ट्रैक्टर का भी कुछ लाभ होगा और खेती भी अच्छी तरह से प्रॉपरली हम जोत जा सकते हैं। तो इसलिए वहां पर बोला जाता है कि स्त्री का जो कर्तव्य है स्त्री को पालन करना चाहिए और जो पति है या व्यक्ति है उसका कर्तव्य जो है उसे ही उसे पालन करना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। जैसे वही आगे एक उदाहरण दे रहे थे, उनके पास एक कपल आए, शादी नहीं हुआ था, शादी होने के पहले उनके पास आए, महाराज आशीर्वाद दो कि हम अभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। तो फिर जो फिर बात होती रही आगे, तो फिर जो बॉय है या जो होने वाला पति है उसने बताया, महाराज सब कुछ अच्छा है लेकिन जो होने वाली पत्नी है उसका एक कंडीशन है। तो महाराज बोले क्या कंडीशन है, कि वो बोलती कि मुझे जॉब करना है क्योंकि मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, इतना मेहनत किया है इतने साल, तो उसका कुछ तो लाभ होना चाहिए। तो महाराज कुछ बोले नहीं, ठीक है उनकी इच्छा। तो फिर शादी हो गई, फिर जॉब करने लगे, जॉब करने लगे तो फिर कंडीशन आने लगी और कि सुबह का खाना कौन बनाएगा। तो ठीक है सुबह का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, एक दिन आप बनाओ एक दिन हम बनाएंगे। फिर शाम का, तो शाम का फिर उन्होंने बोला शाम को तो देखो मुझे लेट होता है, पत्नी बोली मुझे भी लेट होता है, तो दोनों में फिर तह हो गया कि बोले जो जल्दी आता है वो कुकिंग करेगा। तो महाराज बोल रहे थे कि दोनों प्रयास करते थे कि जल्दी ना आए, आने के लिए जितना लेट हो सके उतना लेट आते थे, तो इतना कितना दिन चलेगा। तो कुछ ही दिनों में उनका डाइवर्स हो गया। तो क्यों, महाराज बता रहे थे कि जो कर्तव्य जिसका है वो पालन नहीं कर रहे थे, वो एक दूसरे का कर्तव्य को पालन करना चाहते थे, इसके कारण वो जो गृहस्थ लाइफ जो है वो नहीं टिक पाया। तो जो गृहस्थ लाइफ है या किसी की जो वर्णाश्रम में अगर किसी का सेंटर होना चाहिए तो वो भगवान कृष्ण होना चाहिए, उसी से ही प्रेम बढ़ता है। अगर सेंटर भगवान नहीं है तो वहाँ पर प्रेम नहीं बढ़ता। जैसे गृहस्थ लाइफ या गृहस्थ आश्रम ऐसा बोला जाता है, तो गृहस्थ आश्रम जो है ये फाउंडेशन है बाकी सभी आश्रमों का, क्योंकि वहीं से ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और संन्यास जो है ये सब वहाँ से आते हैं। तो इसलिए देखना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम अगर अच्छी तरह से सिचुएटेड है तभी जाके वर्णाश्रम धर्म जो है वो अच्छी तरह से पालन होगा, अगर वो अच्छी तरह से नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होगा। तो जो भारत गैस है आपने देखा होगा, तो उसके ऊपर एक लिखा है स्लोगन है उनका, कुक फूड सर्व लव, खाना पकाइए और प्रेम परोसिए। तो देखिए हमें एक भक्त बता रहे थे हिंजेवाड़ी में ऐसा एक अपार्टमेंट आ रहा है, वहाँ उस उसके अंदर बहुत सारे फ्लैट्स हैं लेकिन फ्लैट के अंदर किचन नहीं है, तो खाना कहाँ बनाएंगे ये लोग, खाना बनाकर प्रेम प्रेम से खाना बनाएंगे तभी तो प्रेम आएगा। तो वहाँ पर ऐसा सिस्टम है, उधर नीचे रेस्टोरेंट है वहाँ पर ऑर्डर दो और आपको वो ऊपर आपके यहाँ पर भेज देंगे। तो अगर हम देखते हैं जो प्रेम, प्रेम कब बढ़ेगा, जब आपके अंदर आदान प्रदान होगा। जो पत्नी है अच्छे प्रेम से अगर कुकिंग करेगी और अपने पति और बच्चों को खिलाएगी तभी जाके उनके अंदर क्या होगा, प्रेम उत्पन्न होगा। तो आजकल ऐसा ऐड आता है, बताते हैं लोग कि ये महीना आप किचन को छुट्टी दे दो और ऑर्डर करो, जो है स्विगी जोमैटो कुछ तो होता है, तो उसमें ऑर्डर करो तो आपको कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे सचमुच प्रेम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो इसमें तो ज़्यादा अलग अलग लोग अलग अलग ऑर्डर करेंगे और वहीं से ही अलग अलग होने का वो शुरुआत करेंगे और एक दिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये अब तक का रिकैप था, तो अभी हम आज के एपिसोड में जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद एक जगह पर एक रूम कन्वर्सेशन में बोलते हैं कि पति को, पति ने पत्नी को आलिंगन करना चाहिए, मतलब रूपा जी बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ उद्देश्य, जैसे भी आज यहाँ पर जो पुरंजन पुरंजनी को आलिंगन देता है वो उद्देश्य अलग है, लेकिन जो प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं उसका उद्देश्य अलग है। तो प्रभुपाद क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि जो पत्नी है दिन भर घर में काम करती है, भोगा बनाना, भगवान को अर्पण करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर साफ रखना, घर को अच्छी तरह से रखना, तो ये सब जब कार्य करती है शाम तक थक जाती है। जब पति घर पे आता है तो साथ में कुछ तो लेके आता है, जैसा कुछ गजरा है, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री गौरनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो ये सब दिन भर कार्य करने के बाद पत्नी थोड़ा हताश हो जाती हैं, थक जाती हैं, तो उन्हें और प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए पति को आलिंगन करना चाहिए। हम देखते हैं बहुत सारे भक्त जो हैं वो भी चाहते हैं, जैसे अम्बरीश महाराज के इसमें आता है, भक्त स्पर्श अंग संगमम, मतलब भक्तों का स्पर्श करने करना चाहिए, लेकिन किसके लिए? जब हम देखते हैं एक भक्त बता रहे थे, अगर महाराज का एक बार भी एक हग मिल गया ना, बस मेरा लाइफ का लाइफ सक्सेस हो गया। बोले थे अगर जैसे स्पिरिचुअल मास्टर हैं या फिर कोई सीनियर भक्त हैं, जब वो आलिंगन देते हैं तो एक प्रोत्साहन मिलता है सेवा करने के लिए। हम देखते हैं बहुत सारे भक्त जब सेवा करते हैं, तो एक भक्त बोल रहे थे परम पूज्य राधानंद महाराज ने जब उन्हें फर्स्ट टाइम आलिंगन दिया तो ऐसा लगा कि बस मेरा अभी सार्थक हो गया, जीवन सार्थक हो गया, अभी बस सेवा में लगते रहूंगा, सेवा करते रहूंगा, बाकी कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे ये आलिंगन जो है वे प्रेरणादायक होता है। तो आलिंगन हम देखेंगे तीन प्रकार के होते हैं, एक है प्रेम का आलिंगन, दूसरा है द्वेष का आलिंगन, तीसरा है काम का आलिंगन। इसका सॉल्यूशन है, छोड़िए आलिंगन काम का, पाइए आलिंगन राम का। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रेम का आलिंगन है, तो ये प्रेम का आलिंगन जो है हम देखते हैं, इसके अलग अलग उदाहरण हम देखेंगे। जब श्री रामचंद्र ने सीता माई की खोज में अलग अलग टीम को अलग अलग दिशा में भेजे थे, तो उसमें से एक टीम ने ढूंढ निकाला और तब उन्हें पता चला कि सीता माता जो है लंका में है और बीच में जो है बड़ा समुंदर है। अब सोचने लगे, सब विचार, मीटिंग बुलाया गया, सोचने लगे भी किसको भेजा जाए, किसके पास कितना शक्ति है, सब बताने लगे अपना शक्ति, मैं इतना जंप मार सकता हूँ, उतना, एक मिनट बोला मैं उधर जा सकता हूँ लेकिन आने की कोई गारंटी नहीं है, फिर पता कैसे चलेगा नहीं कि नहीं, है ना। तो फिर जामबोन जो है, तूने देखा रे ये हनुमान जी जो साइड में बैठा है शांति से अपना कुछ सोच भी नहीं रहा है, अपना बैठा है साइड में, उनको लगता है क्यों बीच में डिस्टर्ब करना है, उनका मीटिंग चल रहा है, चलने दो। तो जामबोन बोलते, अरे हनुमान तुम कहाँ, हाथ क्यों नहीं ऊपर कर रहे हो, तुम छलांग मार सकते हो। बोले महा, वो बोल रहे मैं कहाँ छोटा व्यक्ति, मैं कहाँ इतना जंप मार सकता हूँ। लेकिन फिर जामबोन ने उनको याद दिला दिया कि तुम्हारे पास क्या शक्ति है, तुम कौन हो। जब याद दिलाने के बाद सब शक्ति वापस आ गई। तो बाद में फिर हनुमान जो है लंका की ओर जाते हैं, बीच में बहुत सारा होता है, वो दिक्कतें आती हैं, वो पार करके वे श्रीलंका में जाते हैं, वहाँ पर सीता माता को ढूंढ लेते हैं, सीता माता को ढूंढ लेते हैं और थोड़ा बहुत नुकसान भी करते हैं रावण का, कि पता चले कि आगे क्या होने वाला है। तो वापस आ जाते हैं, आने के बाद फिर वो सुग्रीव को बताते हैं, फिर उसके बाद फिर सब लोग राम जी के पास आते हैं, भगवान राम ये सब सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और सबने बताया, लीडर ने बताया कि ये जो हनुमान है इन्होंने ये सब ये कार्य किया है, तो उनको आगे किया जाता है। तो राम देखते हैं कि अभी इनको क्या उपहार दिया जाए, देखते हैं भाई उनके पास तो कुछ नहीं है, तो फिर वो राम जी जो है हनुमान जी को आलिंगन देते हैं। तो ये प्रेम का आलिंगन है। तो भगवान जो है अपने भक्तों के ऊपर प्रेम करते हैं, तो प्रेम से वे अपने भक्तों को आलिंगन देते हैं। और जो हनुमान है अभी बोले, अभी बताओ नेक्स्ट क्या है, तो अभी नेक्स्ट सेवा के लिए रेडी हो जाते हैं। वैसे हम देखते हैं भगवान कृष्ण जो है वे राह देखते हैं कि जो बद्ध जीवात्मा इस बद्धता को छोड़कर कब उनके पास आता है। तो हम देखते जो बृहद भागवत अमृत में गोप कुमार की स्टोरी आती है, तो जैसे वे गोलोक पहुंचते हैं तो भगवान राह देखते हैं कि कब वो आते हैं और मैं कब उन्हें आलिंगन करूं। तो ये प्रेम का आलिंगन। दूसरा उदाहरण देखेंगे रामानंद राय का। तो रामानंद राय जो है वे राज्यपाल थे, गवर्नर थे गोदावरी नदी के पूर्व और पश्चिम तट पर। तो वहां पर वे उनका कार्य था और चैतन्य महाप्रभु भी उस तरफ गए जब साउथ इंडिया जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। वहां पर गए, उन्होंने स्नान किया गोदावरी में और अपना जप करके बैठे थे। तो पालकी में रामानंद राय आते हैं। उनका डेली रूटीन था कि उस समय आना है, स्नान करना है और जाना है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि कोई व्यक्ति बड़ा व्यक्ति लग रहा है तो पता चले कि यहाँ का गवर्नर है और उतरे, स्नान कर रहे थे, स्नान कर रहे थे लेकिन चैतन्य महापुरुष के मन में इच्छा आ रही थी कि उन्होंने जाके आलिंगन करें। लेकिन फिर बाकी लोग बोलने लगे कि आप सन्यासी हो, वो तो एक शूद्र है। तो फिर जब स्नान हो गया, बाहर आए तो रामानंद राय ने भी देखा कि एक इफल्जेंट सन्यासी देख रहे हैं। तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और जैसे फिर पहचान लिया तो ये जो रामानंद राय है वो पहचान लेके मेरे मालिक हैं और मैं उनका सेवक हूँ, और वे एक दूसरे को आलिंगन करने लगे। तो आलिंगन करने लगे और लोग देख रहे थे आजू बाजू वाले, जो स्मार्ट ब्राह्मण थे वो बोले, राजा ऐसे कैसा, एक सन्यासी है और एक शूद्र है आलिंगन कर रहे हैं एक दूसरे को, और रो रहे हैं, जो अष्ट सात्विक विकार है सब प्रकट होने लगे। कोई कुछ बोलने लगा, बोले सन्यासी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये इसको भी कैसे उन्होंने आलिंगन दिया। तो ये सब वहां पर हो रहा था। लेकिन एक भगवान और उनके भक्त जो है आलिंगन के बाद प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे। तो बाकी भी अलग अलग आता है, सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु एम्ब्रेस करते हैं, वासुदेव घोष को भी एम्ब्रेस करते हैं, वासुदेव दत्त को एम्ब्रेस करते हैं, जो रानियां हैं द्वारका के। जब भगवान द्वारका में आते हैं तो रानी तो महलों से देखती है और देखने के बाद तुरंत उनकी इच्छा होती है कि उन्हें आलिंगन करें, लेकिन लोक लज्जा के कारण वे जाकर आलिंगन नहीं कर सकते हैं। जैसे आजकल होता है तो लोक लज्जा तो लोग भूल जाते हैं। ये फिर जो रानियां हैं अपने हृदय में ही भगवान को आलिंगन करते हैं और फिर अपने जो बच्चे हैं उनको भगवान की तरफ भेजते हैं कि वो उनको आलिंगन करें। दूसरा है आलिंगन द्वेष का। तो यहां पर देखेंगे जो महाभारत में, तो भीम ने जो है 100 के 100 पुत्रों को मार दिया था, बाकी सब ने भी बहुत सारा लोगों को मारा था, लेकिन धृतराष्ट्र का जो द्वेष था पर्टिकुलरली भीम की तरफ था कि उन्होंने नॉट आउट रहकर सेंचुरी मार दिया था, सबको आउट कर दिया था। तो द्वेष बहुत उबल रहा था उनके अंदर, तो सोच रहा था कि भी कैसे क्या किया जाए। देखिए हालांकि इतना सब होने के बाद धृतराष्ट्र को छोड़ दिया था, उनको नहीं मारा था, उनके घर में रखकर उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। ऐसा नहीं कि अरे तुम्हारे बच्चों ने और तुम भी उसमें सहभागी थे इसलिए तुम्हें हम कालकोठरी में डाल देंगे, ऐसा नहीं। तो अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे थे सभी पांडव, लेकिन धृतराष्ट्र के हृदय के अंदर का द्वेष नहीं जा रहा था। तो फिर वो उन्होंने इच्छा व्यक्त की, ये भीम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं तुम्हें आलिंगन दूं, पता नहीं प्रेम उभर आ रहा है तो आलिंगन करना है। तो भीम को जब ऐसा मैसेज मिला तो वो खुश हो गए, बोले बड़े चाचा अभी आलिंगन करने वाले हैं, तो जाते हैं। लेकिन बीच में कृष्ण आ जाते हैं, तो फिर कृष्ण बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम जाओगे तो हड्डी पतली एक हो जाएगी, तो लेकिन तुम क्या करो, तुम्हारा पुतला बनाओ और वहां पर रख दो। धृतराष्ट्र ने देखा भीम आ गया, उन्हें पता नहीं, अंधा था, पता नहीं था कि सामने क्या है, और उन्होंने उस पुतले को जब आलिंगन किया, और ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे हाथियों का बल, 10,000 हाथियों का बल उस धृतराष्ट्र के अंदर था, तो उस बल से उन्होंने उस पुतले को चूर चूर कर दिया। तो इतना जो द्वेष है वो पूरा द्वेष जो है वहां पर बाहर निकाल दिया, ये द्वेष का आलिंगन है। दूसरा हम देखते हैं जो शिवाजी महाराज हैं, उनके लाइफ में भी ऐसा एक आलिंगन का समय आया था, तो जो शिवाजी महाराज ने सबके नाक में दम कर दिया था, आदिल शाह, मुगल, निजाम शाह, सबके, तो इन्होंने प्लान किया कि अभी शिवाजी को कैसे मारा जाए। पूना में वो शाइस्ते खान आएगा, उसकी उंगलियां तोड़ दी। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने प्लान किया कि अफजल खान को भेजा जाए। तो फिर शिवाजी महाराज भी बहुत चतुर थे, तो बोले इतना बड़ा पहाड़ जैसा ये राक्षस, इसको अगर मारना है तो आमने सामने तो नहीं मार सकते, क्योंकि बहुत सारा नुकसान कर रहा था, बहुत सारे जो प्रजा है उनको हानि पहुंचा रहा था। तो उन्होंने उनको पहाड़ों में जंगल की तरफ लेके गए, प्रतापगढ़ करके हैं इधर महाबलेश्वर के आगे, तो उधर लेके गए। और शिवाजी महाराज उसके पास नहीं आए, और प्रतापगढ़ जो है नीचे है, पहाड़ों को उतर कर नीचे जाना पड़ता है, जंगल में जाना पड़ता है। तो शिवाजी महाराज ने उनको वहां पर बुला लिया, और ये धूर्त पता था कि ये धूर्त है, तो शिवाजी महाराज ने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया था कि अगर ये ऐसा करेगा तो क्या करना चाहिए, ऐसा करेगा तो क्या करना चाहिए, सब प्रॉपरली प्लान करके वो गए थे। और तब अफजल खान बोले कि आलिंगन दो, तुम्हारे पिताजी शाहजी मेरे भाई जैसे हैं और तुम मेरे भतीजे जैसे हो, तो आओ गले मिलते हैं। तो जब गले मिले तो अफजल खान, जो अफजल खान का प्लान था कि इन्हें मारा जाए, लेकिन खुद ही मारा गया। तो ये द्वेष के कारण वे शिवाजी महाराज को मारना चाहते थे, लेकिन खुद ही मर गया। समय हो गया है, तो आलिंगन काम का जो है तो ऑलरेडी चल रहा है, ये एपिसोड जो है वही एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, दूसरा कुछ एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। और अगर हमें भगवान का, राम का आलिंगन चाहिए तो ये सब हमें छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, और अपना ड्यूटी जो है वो अच्छी तरह से निभाना पड़ेगा। अगर हम अपना ड्यूटी निभाते नहीं है तो श्रम ये वही केवलम होता है। जैसे अगर कोई लड़का IIT में एडमिशन लेता है, उधर जाने के बाद वो ढूंढता है मेस, कौन सा अच्छा मेस है, जैन मेस, ये मेस, वो मेस, और अथक परिश्रम के बाद वो मेस, हरे कृष्णा मेस मिल जाता है उसे, लेकिन ना भक्ति करता है ना पढ़ाई करता है, तो क्या होगा, उसका जो उद्देश्य है IIT जाने का वो सफल होगा क्या? नहीं होगा। जितना मेहनत किया उसने ढूंढने का अलग अलग मेस, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उसका जो गोल ऑफ लाइफ है वो क्या है कि IIT में अच्छी तरह से मार्क्स से पास होने का। तो अगर वो फोकस भूल गया तो श्रम ये वही केवलम है। हरे कृष्ण। तो आज हमने देखा कि नारद मुनि जो है एक यूनिक प्रचारक है, और उसके बाद हम देखा जो रिकैप देखा, उसके बाद आज के जो श्लोक है उसमें जो आलिंगन के बारे में बताते हैं, और अंत में अपना ड्यूटी जो है भगवत धाम जाने का उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये सब चर्चा करके विराम देंगे। चलो प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत की जय। गुरु प्रेमानंद देव।